Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajatagiri Nibham చారుచంద్రావృతంసం రత్నాకల్పోజ్వలాంగం పరసుమృగవరా భీతిహస్తం ప్రసన్నం పద్మాసీనం సమంతః స్తుతమమరగణిర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వవందిం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం నారాయణం పద్మభవం వశిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం సుఖం గౌడపదం మహంతం గోవింద యోగీంద్రమథాస్య శిష్యం శ్రీ శంకరాచార్యమథాస్య పద్మ పాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తంతోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మత్ గురుం సంతతమానతోస్మి విశుద్ధ జ్ఞాన దేహాయ త్రివేది దివ్య చక్షుసే శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం ఓం ఓం. కృష్ణ యజుర్వేదీయ శ్వేతాశ్వతర్ కి అంతర్గత్ ఛఠే అధ్యాయ మే దశమీ మంత్ర కి వ్యాఖ్య హై. యస్తంతునావ ఇవ తంతుభిః ప్రదానజైః స్వభావో స్వభావతో దేవ ఏకా స్వమావృణోత్ సనో దద్యాత్ బ్రహ్మాప్యయం ఏకో దేవః సర్వభూతేషు గూఢః సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా కర్మాధ్యక్ష సర్వభూతాధివాసః సాక్షి చేత కేవలో నిర్గుణశ్చ ఏకో వశీ నిష్క్రియాణాం బహూనాం ఏకం బీజం బహుధా యః కరోతి తమాత్మస్థం యను పశ్యంతి ధీరాస్ తేసాం సుఖం శాశ్వతం నేతరేషాం నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం ఏకో బహూనాం యో విదధాతి కామాన్ తత్కారణం సాంఖ్యయోగాదిగమ్యం జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాశై. ముక్తి కా ఉపాయ బతాయ జా రహా హై. జీవాత్మ కిస్ తరహ ముక్త హోతా హై, उसको न जानने के कारण बंधन में पड़ा हुआ है, इसीलिए उसको जानेगा तो ही मुक्त हो जाएगा. वेदांत जब ये वाक्य प्रयोग करते हैं कि उसको जानने पर मुक्त हो जाएगा, इसका अभिप्राय यह है कि अपने से भिन्न कोई और है उसको जानने पर हम मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है. उसको जानने का अभिप्राय है कि खुद को जानना, क्योंकि वेदांत कभी भी तुम्हारे स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप को अलग अलग करके स्वीकार नहीं करता है। उसको न जानने का मतलब है खुद को न जानना, उसको जानने का मतलब है कि खुद को जानना। कैसा है वो? यस्तंतुनाभ इव तंतु भी प्रजानजयी स्वभावतो देव एकस्वम आवृणो। यह माने जो तंतुनाभ, तंतुनाभ वाला है, यानी नाभ शब्द का अर्थ होता है नाभि मंडल। शरीर का समस्त स्नायु मंडलों का एक केंद्र है नाभि मंडल। जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में था, अपने शरीर को विकास करने के लिए सारे पोषक तत्वों को वो उसी नाभि मंडल से ग्रहण करता था, यानी प्राप्त करता था। इसलिए कठोपनिषद में मनुष्य शरीर के एकादश छिद्र हैं ये वर्णन आया है। सामान्यतः तो नौ छिद्र हैं जो अभी भी खुले हुए हैं, दो छिद्र इस समय बंद है। नाभि मंडल का और ब्रह्मरंध्र का, ये जो रंध्र हैं, दो छिद्र हैं, ये जब तक मां के गर्भ में थे तब तक नाभि मंडल खुला हुआ था और उसी से उस गर्भस्थ शिशु के शरीर के विकास के लिए सारा भोजन, सारा आहार, सभी तत्व वहीं से प्राप्त करता था। बच्चे को ध्यान में रखकर बच्चे के विकास के लिए कोई मां औषधि खाती थी तो वह औषधि बच्चे के नाभि के माध्यम से बच्चे को प्राप्त होता था। और तीसरे महीने में उस बच्चे के शरीर को फोड़कर परमात्मा और जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर सहित स्थूल शरीर में प्रवेश किया हुआ मार्ग को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, तालु भेदन करके प्रवेश करता है। ऐतरेय उपनिषद में इसकी अच्छी चर्चा आई हुई है। बाद में धीरे धीरे वह तालु का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है, नाभि का छिद्र भी नाल छेदन के बाद बंद हो जाता है, बाकी जो नौ द्वार हैं वह अभी भी खुले हैं। योगी जिस द्वार से प्रवेश किया हुआ था उसी द्वार से निकलता है तो वह सीधा क्रम मुक्ति के मार्ग जाता है। इसलिए मूल बंधा और षडबंधा आदि करके योगी प्राणायाम के माध्यम से ब्रह्मरंध्रों को फोड़ते हुए वहां से सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाते हैं और वो योगी अर्चिरादि मार्ग के माध्यम से क्रमशः ब्रह्मलोक पहुंचकर मुक्त हो जाता है। उसी को देवयान के रूप में उपनिषद ने व्याख्या की, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। लेकिन इसके अलावा जो अन्य छिद्र हैं, नौ मुख्य छिद्र हैं, उनमें से जीवात्मा निकलता है तो पुनरावर्तते, घूम फिर कर आता है वो। नौ ये मुख्य हैं, लेकिन इसमें तो करोड़ों छिद्र हैं, जीवात्मा किसी भी छिद्र से निकल सकता है। इन सब का संबंध है शरीर के स्नायुओं से। ये तो जीवात्मा के स्वरूप के बारे में बता दिया गया, लेकिन यहां ये बात परमात्मा के बारे में आ रहा है। यह तंतु नाभ इव तंतु भी प्रदान जयी। परमात्मा का एक नाम है पद्मनाभ, आप लोगों ने सुनाई है पद्मनाभ। तमिलनाडु के कावेरी के किनारे में एक बड़ा भारी मंदिर है पद्मनाभ, इस पद्मनाभ भगवान का, उसी को रंगराज भी बोलते हैं, पद्मनाभ भी बोलते हैं। यानी जिसके नाभि से पद्म यानी कमल निकला है और उस कमल में ब्रह्मा जी का अस्तित्व और सृष्टि का विस्तार का कारण बना, तो वो तो हो गए पद्मनाभ। उपनिषद ने उस परमात्मा का एक दूसरा नाम रख दिया है तंतुनाभः। तंतु माने वह एक सूक्ष्म तंतु। यह तंतुनाभ परमात्मा तंतुनाभ है, उसके नाभि में तंतु भरे पड़े हैं। तो आप लोगों ने कठोपनिषद आदि में सुना हो, मुंडक उपनिषद में, यथोर्णनाभि सृजते गृणते च यथा पृथिव्याम औषधयो भवन्ति यथा पुरुषात् संभवति केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति हविष्वम्। ये उर्णनाभि के रूप में वर्णन किया वहां, और परमात्मा के लिए जहां उर्णनाभि के रूप में वहां अन्य श्रुति में वर्णन किया, उसी परमात्मा को यहां तंतुनाभ के रूप में संकेत कर दिया। एक ही अर्थ है, जैसे मकड़ी अपने ही पेट में विद्यमान सारी तंतुओं को मुख्य द्वारा निकालकर एक जाला बनाता है और उस जाले के बीचों बीच में अपने असंग होकर रहता है, उस जाले का निर्माता वो खुद है और उस जाले का भोक्ता भी वो खुद होता है और बीचों बीच में निश्चिंत असंग होकर रहता है और उस जाले को फिर बाद में वो सब समेट भी लेता है। यथा औषधयो संभवती, यथा पृथिव्याम औषधयो संभवती, जैसे एक ही पृथ्वी में अनेक प्रकार के वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, उद्भिज्य होकर उसी में उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित होते हैं और उसी में सुख के लय हो जाते हैं। यथा पुरुषात् संभवति केशलोमानि, जिस तरह एक ही व्यक्ति के शरीर में अनेक प्रकार के केश और रोम आदि उत्पन्न होते रहते हैं और उसमें से गिरते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं और गिरते रहते हैं, इसी प्रकार से उस अक्षर अविनाशी परमात्मा द्वारा सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। यह अन्यत्र जो श्रुति है उर्णनाभि के रूप में वर्णन किया, उसी भाव से यहां ये श्रुति श्वेता सूत्र की श्रुति ने परमात्मा तंतुनाभ वो तंतुनाभ का उपादान कारण क्या है, तो बोले प्रदान जयी तंतु भी, वो सारे विश्व जो तंतु है, इसको एक पहले की श्रुति ने या एक जालवान करके, जालवान करके जाल वाला, विश्व जाल वाला होता है ना, मछुआरे के पास जाल, मच्छी पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं और वो जाल लेकर घूमता है और जाल फेंकता है, तो हमेशा जाल अपने पास रखने के कारण उसको जाल वाला कहा, जालवान कहा। परमात्मा के पास ऐसा जाल है विश्व जाल के सारे जीवों को उसमें फंसाता है, इस मंत्र की व्याख्या में हमने कहा ही था। एक बार संत कबीर दोनों बाप बेटे कहीं जा रहे थे नदी के किनारे, संत कबीर का बेटा कमल तो जा रहे थे किसी नदी के किनारे, कोई मछुआरा था, वो अपने हाथ में जाल लिया और फेंक दिया नदी में, और धीरे धीरे उस जाल को खींचा तो सारे मछलियां उस जाल में फंस कर आ गई। फिर दोबारे उसने जाल फेंकी, फिर बहुत से मछलियां उसमें फंस कर आ गई। दोनों बाप बेटे खड़े खड़े देख रहे थे, और इस दृश्य को देखकर कबीर के हृदय में दया आ गई। बेचारे ये मछली कब तक फंसती रहेंगे इसके जाल में, फेंका जाल उसने और उसने जाल में फंसाया और खींच लिया। क्या स्वतंत्र से घूम रही थी नदियों में और उसके जाल में फंस गई, और अब ये जिंदगी खत्म। मछलियों की इस अवस्था को देखकर सारे विश्व के मनुष्य और प्राणियों पर उनकी चिंता हुई कबीर की। इसी तरह एक व्यक्ति है, वो यमपास यमराज या जो हो काल, ऐसा जाल उसके पास है कि वो काल का जाल सारे सचराचर प्राणियों के ऊपर ऐसा फेंकता है संसार में कि उसके जाल में जो फंस जाते हैं, इसी तरह फंसते हैं, इसी तरह मरते हैं, इस तरह फंसते हैं मरते हैं, इनका उद्धार कौन करेगा। कबीर के हृदय में बड़ा दया आ गई और अपने बेटे कमाल से कहा कि बेटा देखो सब मर रहे हैं इसी तरह, ये सारा विश्व सब मर जाते हैं। तो कमाल ने कहा पिता को, कबीर को, सब नहीं मरते हैं पिताजी, ये तो वो मूर्ख मछली है जो मछुआरे को देखकर और डर के मारे बाहर भागते हैं तो तब फिर वो जाल में फंसा लेता है। यदि इनके पास बुद्धि हो जैसी मेरी पास है, मेरे पास है, और उस मछुआरे को देखकर मछुआरे से दूर भागने की जगह मछुआरे के ही आसपास में, उसी के चरणों के आसपास में जहां मछुआरा खड़ा है उसी के आसपास में घूमते रहे तो कभी भी जाल में नहीं फंसेंगे। यही तो है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाः च प्रेणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये शरणापन्न है, शरणागति है, लेकिन जीवात्मा शरणागति, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करता नहीं, और उस परमात्मा को अज्ञान के चलते काल के रूप में देखता है और उसके डर के मारे भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, उसका जाल सब जगह फैला हुआ होने के कारण जहां भी भागेगा वो फंस जाएगा। लेकिन उस समझदार मछलियों की तरह उस केवट के उसके मछुआरे के पांव के आसपास में घूमे तो कभी भी मछुआरा अपने आसपास में वह जाल नहीं फेंकता। परमात्मा के आसपास में यह संसार का जाल नहीं है, संसार का बंधन नहीं है। व्यक्ति ज्यों ज्यों परमात्मा से बहिर्मुख होकर दूर भागता रहेगा त्यों त्यों उसके जाल में फंसता रहेगा, और ज्यों ज्यों परमात्मा के नजदीक होता रहता है त्यों त्यों वह फंसने की चांस कम है, वो मुक्त होने का अवसर है। यस्तंतुनाभ इव तंतु भी ही, कहां से निकलते हैं ये विश्व तंतु, परमात्मा को बोले उसी के नाभि में है। क्या है? प्रधान जयी ही तंतु भी ही, सारे तंतुओं का जो बीज है प्रधान, ये प्रधान शब्द सांख्यों को बड़ा प्रिय है। सांख्य दर्शन कभी भी माया का शब्द का प्रयोग नहीं करता, वह माया के जगह प्रकृति या प्रधान शब्द प्रयोग करना चाहता है। प्रधान का अर्थ होता है कि सारे विश्व के लिए जो बीज उपादान कारण है वह प्रमुख उपादान कारण होने के कारण उसको प्रधान कहा, और उसी को प्रकृति भी कहा। तो प्रधान जयी, जैसे सभी एक छोटे से बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से पेड़, पेड़ में से माने बीज में से अंकुर, अंकुर में से वृक्ष, वृक्ष में से शाखा, पत्ते, फूल, फल, सभी वहीं से उसी एक बीज में से उत्पन्न होने के कारण सब वृक्ष के जितने भी अवयव हैं वो सब अवयव बीजज हैं, बीजज बीज से उत्पन्न हुए इसलिए बीजज हैं। इसी तरह सारा का सारा तंतु, विश्व तंतु, ब्रह्मांड तंतु, यह प्रधान से उत्पन्न हुआ होने के कारण इन तंतुओं को कहा प्रधान जही, प्रधान के द्वारा उत्पन्न हुआ, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ। जैसे रावण के नाभि में अमृत था और वही अमृत उसके शरीर में सर्वत्र निस्सरित हुआ करता था, इसलिए रावण को मारने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि वहीं से सब फैल रहा था। जब भगवान राम विभीषण ने संकेत किया कि उसके नाभि में अमृत होने के कारण वह आपके अस्त्र शस्त्रों से निष्प्रभावित हो रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसके नाभि के अमृत का शोषण करना पड़ेगा। जब भगवान राम ने अग्निबाण नाभि में मारा रावण के, तो अग्निबाण के द्वारा सारा अमृत शोषित हो गया, तो रावण के जो अमृतत्व की जो न मरने की क्षमता थी वो सब बाधित हो गई। तब एक एक धनुष्बाण के द्वारा रावण के एक एक सिर को काट दिया, तो रावण मर गया। इसी तरह परमात्मा के नाभि में वह प्रधान तत्व विद्यमान है और वही प्रधान, जिसको सांख्य प्रधान कहता है, प्रकृति कहता है, उसी को वेदांत माया कहते हैं। वेदांत तो उसको माया के रूप में संबोधन करेंगे और सांख्य प्रकृति के रूप में संबोधन करेंगे। और उस परमात्मा के नाभि में जो माने प्रधान विद्यमान है, अव्यक्त जिसको कहते हैं, प्रधान कहो चाहे अव्यक्त कहो, वही सारे विश्वतंतु का सृजक है, वहीं से निस्सरित हो रहे हैं, इसलिए कहा प्रधान जही तंतु भी ही। इस बात को समझने के लिए आप और रेशम के कीड़े को थोड़ा ध्यान में लाओ तो वो समझ में आ जाएगा। रेशम के कीड़े के अंदर जो रेशम के जो धागे हैं वो सब उसी के शरीर से निकलते हैं और वह सब अपने ही ऊपर लपेटता है, इसलिए उन्हीं तंतुओं के द्वारा वह आवृत होता है, इसलिए उसको कोषकार भी कहते हैं। इसलिए उस धागे के द्वारा बने हुए वस्त्रों को कौशेय वस्त्र कहते हैं। कौशेय वस्त्र, कौशेय माने कोष के द्वारा बना हुआ वस्त्र, कौशेय को शब्द का अर्थ होता है तंतु और को शब्द का अर्थ होता है ढकने वाले तत्व, क्योंकि जो निर्माता कीड़ा है उसी को वह निर्मित होने वाले धागे उसको ढक देते हैं, इसलिए उसको कोष कहा। परमात्मा का भी ये कोष है, क्या है तो बोले अपने ही नाभि मंडल स्थ प्रदान के द्वारा उत्पन्न हुए जितने भी ये तंतु हैं, उसके एक एक संकल्प ही एक एक तंतु है। स्वभावतो देव एक समावृण होत, एक अद्वितीय परमात्मा देवता, उन सब कोषों के द्वारा, तंतुओं के द्वारा वो अपने आप को आवृत कर लेता है। जैसे कीड़ा अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए हुए तंतुओं से अपने आप को ढक लेता है, उसी तरह वो परमात्मा अपने ही प्रकृति, अपने आश्रित रहने वाली प्रकृति और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हुए तंतु की तरह यह विश्व उसी के द्वारा वह अपने आप में अपने स्वरूप को ढक लेता है और यह ढकने के कारण ही अन्य को वह उसका दर्शन नहीं हो पाता। एक प्रकार से परमात्मा ये विश्व की रचना क्यों कहता है तो बोले क्यों करता है तो बोले अपने आप को सुरक्षित ढककर रखने के लिए करता है। यस्तंतुनाभ इव तंतुभिः प्रजानजैः स्वभावतो देव एकस्वमावृणोत्। स्वाभाविक रूप में अपने आप को वह आवृत कर लेता है। सनु दद्यात् ब्रह्माप्ययम्, स देव जिसने अपने स्वरूप को छुपा कर रखा है वह देव, न अस्माकम्, ये प्रार्थना परक मंत्र है, उस परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, उस सगुण निराकार परमात्मा से यह प्रार्थना की जा रही है, जो तंतुओं से ढका हुआ परमात्मा है उसी से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मा, इन तंतुओं से आवृत होने के कारण तुम्हारा जो स्वरूप है वह मुझे अपरोक्ष नहीं हो पा रहा है, आप चाहो तो इन तंतुओं के आवरण को हटा सकते हो, आपके आवरणों को हम नहीं हटा सकते।